अकदस साहिबा, सिखाना पढ़ाना मुझे भी खूब आता है। ये जो तमाचा मैंने इसे मारा है इसलिए था कि जो कुछ तुम लोगों ने सिखाया पढ़ाया वो भूल जाए।
मेरे पीछे मत आइएगा, कभी मत आइएगा।
ये तुम्हारा आखिरी फैसला
है? हाँ, आखिरी फैसला है।
इस चलती पे तेल ना डालो।
मैं अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकता।
मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों में झगड़ा हो।
ये लो अमीर, मैं तुम्हें घर किराए पर दूंगा। अभी तैयार हुआ है बनक स्क्वायर पर। इसे मैंने सरमायाकारी के लिए खरीद लिया था, अभी बेचना नहीं है। अच्छा घर है।
कह दूंगा कि लोन लिया है
ऑफिस से।
इससे किसी को क्या,
इन दोनों को एक साथ रहना है या नहीं। हाँ तो फिर इसके लिए घर की भी जरूरत होगी। सबको मालूम है अमीर के पास पैसे नहीं है। नहीं मालूम तो समझ जाएंगे, वही इस्माइल भी जान जाएंगे, तो समझ जाएं।
अस्सलाम वालेकुम कैमियार साहब।
वालेकुम अस्सलाम महमूद साहब, आइए
आइए।
अस्सलाम वालेकुम।
उफ ये बुढ़ापा। आ जाओ। ला खराब हो गया, ठीक करवाना होगा। आ जाओ।
अच्छा है, फुल फर्निश भी है।
हाँ लेकिन अगर कहो तो हटा देंगे। माफ करना। हाँ हाँ हाँ, सामान उतार लो और स्टोर में रखवा देना। बस बिल से जरा मिला के देख लेना, एक एक चीज को मिला के देख लेना।
नहीं है लेकिन काश अपना होता है ना। अच्छी बीवी जल्द मियां को घर दिला देती है। मुझे नहीं लगता मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी।
किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन हाथ तो अच्छा चलता है।
वो खत्म भी करो ना। एक गलती माफ कर दो तो तुम भी जब गलती करोगी मैं माफ कर दूंगा।
अच्छा,
इस फ्लैट में किचन के अलावा भी कुछ जगह हैं देखने के लिए।
माफ करो ताकि मुझे भी माफ करना आ जाए।
ठीक है ठीक है
ठीक है।
अकरम बेटी, बेडरूम भी देख लो ना।
आज रात तो सामान आप ही का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कल अपना हम सामान ले आएंगे, अगर आप इजाजत दें।
मैंने कहा ना, इस दरवाजे का लॉक खराब है। आज हुशी के साथ रुक जाओ, कल यहाँ आओ। सामान लाने में जल्दबाजी ना करो, आहिस्ता आहिस्ता।
मुझे अपना जहाज खुद ही सेट करना है, कल ही ले आऊंगी।
जैसी तुम लोगों की मर्जी हो। चलो भाई, तुम लोगों को घर पहुंचाकर मुझे अस्पताल जाना है बहन से मिलने के लिए, सईद की अम्मी से। चलो भाई।
सईद साहब को आप बहुत चाहते थे।
जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये बात बेहतर तौर पर समझोगे कि किसी भी चीज को दूसरी चीज से नहीं मिलाना चाहिए। जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ेगा ये बात सीख जाओगे कि हर चीज का अपना अलग मकाम होता है। अकरम के अब्बा मुझसे और तुम्हारे अब्बा से ज्यादा बड़े ताजिर थे, धंधा अच्छी तरह जानते थे, उनके हालात भी अच्छे थे। जब मैं हुशी की अम्मी का रिश्ता मांगने जा रहा था तो बड़े साहब आगे आए, पैसे दिए, घर दिया। कामयाब जिंदगी के ज़कात जानते हो क्या है? ये कि दूसरों की कामयाब जिंदगी में मदद करो। जितना तुम्हारे बाप पर मेरा और सईद की अम्मी का कर्जा है, उतना ही मुझ पर तुम दोनों का कर्जा है, वही ज़कात वाली बात के हिसाब से। हुशी से तुम्हारा राब्ता कैसा है?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। हाँ कहो तो वनक वाले घर वापस चले। ये जो आपके बहन की नजरें हैं बहुत पेचीदा है, बहुत ज्यादा पेचीदा, और तुम भी पेट हल्की।
देखो, इतना सारा खून मेरे चेहरे पर जमा था, कुछ कहने सुनने की नौबत ही नहीं आई।
रात को दरवाजे के पीछे ही सोएंगे, लॉक खराब होने तो क्या करें, ठीक है?
चलो अच्छी बात है, मुझे घर छोड़ दो और तुम जाओ स्टोर कुछ रात के खाने के लिए लेके आओ। कल बैंक जाना और वो 10 लाख कामयाब साहब को दे देना, ताकि उनको ये ना लगे कि हम उनके मौके का फायदा उठा रहे हैं।
कहा जाता है कि अपने ही घर में जाके सुकून मिलता है। आ क्यों नहीं रही हो? फिर मार खाने का दिल चाह रहा है? आऊं। अस्सलाम वालेकुम। हम मजाक कर रहे थे।
घर बार वाले भी हो गए है ना?
दरअसल के लोन।
लोन
और क्या?
कामयार से बड़ी जान पहचान हो गई।
कोई और रास्ता नहीं था, हमारे पास पैसे ही कितने।
पैसे की कहां बात हुई, इस शहर में जितने भी मसाइल हों, मैं कल सुबह तक तुम्हारे लिए 8 घरों का इंतजाम कर सकता हूँ।
मुझे मालूम है आपको जहमत नहीं देना चाहता था।
ये तो तकल्लुफात है। मुझे बताओ तुम्हारी असल प्रॉब्लम क्या है।
अम्मी,
मैंने प्रॉब्लम पूछी है, मां प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हारे बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं अकरम को कामयार के घर में नहीं रहने दूंगा। कल को इस्माइल का दिल जलेगा और कहेगा कि भाई साहब कामयार के चक्कर में पड़ गए। मैं और इस्माइल भाई भाई हैं, हो सकता है एक दूसरे का गोश्त तक चबा जाएं, लेकिन एक दूसरे की हड्डियां नहीं फेंकेंगे।
लेकिन माफ कीजिएगा, फिलहाल मसलहत इसी में।
मसलहत? लड़के, तुम्हें पता है मसलहत क्या होती है?
आपने कहा था कि हमारा साथ देंगे।
हाँ, तो साथ तो हूं जो यहां आया हूं, लेकिन इस साथ देने का यह मतलब नहीं कि अपने भाई को ही छोड़ दूं। घर, पैसा, जान, जो चाहिए दूंगा, लेकिन इसमें साथ नहीं दूंगा। चलो अकरम।
मैं नहीं आऊंगी अब्बा, हमने इसे किराए पर लिया है ताकि झगड़ा ना हो। अब खुदा की कसम मुझे झगड़े से बहुत डर लगता है। सब लोग एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, और अगर यहाँ रहेंगे तो यहाँ पे है ना, ना आपके घर पे है और ना आपसे पैसा लिया है, झगड़ा भी नहीं होगा इस तरह। अब एक मिनट खुदा के लिए मेरी बात सुनिए। जब आप बोलते हैं तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। इतना ही कहने के लिए मैंने बड़ी हिम्मत की है। अब खुदा के लिए मुझे ये पहनने दीजिए, खुदा के लिए मुझे ये रहने दीजिए। अब्बा, अब्बा देखिए, अगर आप मुझे घर तक खींच कर भी ले जाएंगे तब भी मैं यही वापस आऊंगी। अब्बा, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, क्यों हर एक मेरी जिंदगी खराब करने के लिए तैयार है? अब्बा खुदा के लिए, खुदा के लिए मुझे यही रहने दे। अब्बा खुदा के लिए, ठीक है?
कामयार ने बड़े महंगे में ये घर दिया है तुम्हें।
नहीं चाचा जान, सच बताइए, 10 लाख महंगा है?
शुक्रिया जनाब।
कोई बात नहीं साहब।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
कहाँ जा रही हैं?
इस्माइल के घर।
सब ठीक है ना?
कभी कभी दो तमाचे जड़ना अच्छा होता है, और कभी सर पर प्यार से हाथ फेराना। ये तमाचा जड़ने का वक्त है। मैं ये पूछने जा रही हूँ कि अकरम के एबॉर्शन का खत टैक्सी वाले के हाथ क्यों भेजा? उसके एक पैर टूट गए थे जो नहीं आ पाया, या फिर इनसी ने कुछ सादे ही उसके कान भर दिए हैं जो उसकी अकल खप्त हो गई?
अब मैं क्या कहूं, हो सकता है कोई काम पड़ गया हो।
चलो जाओ, सैलाब सब कुछ बहाकर ले जा रहा है और तुम यहां खड़े होकर मुझसे और अपने आप से झूठ बोल रहे हो। एक दूसरे के घर नहीं जाते, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हो। तुम दोनों के बच्चे कामयाब की गोद में बैठे हुए हैं और तुम कह रहे हो कोई कांप पड़ गया होगा अकलमंद। मैं गलत कह रही हूं? अगर गलत है तो गोया ये बाल मैंने धूप में सफेद किए। उसने जो पैगाम भिजवाया है उसी के साथ जा रही हूँ उसके पास और बताती हूँ। अभी अकदस को भी समझा चुकी हूँ, सब कुछ समझा दिया है कि लगाई बुझाई से बचो। तुमसे भी कह रही हूँ अपने बड़प्पन का ख्याल रखो, समझदार हो। चलो बेटे।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान।
ये क्या है?
एबॉर्शन कराने का इजाजत नामा, कल सुबह 10 बजे।
खुद लेकर क्यों नहीं आए? दूसरों के हाथ पैगाम भिजवाते हो? अब और क्या क्या करना बाकी है? बैठे क्यों हो?
क्या बैठ कर जवाब नहीं दिया जा सकता?
जबां दराजी भी सीख ली है।
अरे अब मेरी यहाँ तक बात पहुँच चुकी है अम्मी जान, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है? इनसे के बकौल गोबर के जितनी भी हमारी हैसियत नहीं रही। हमारी बात हो गई थी ना, पामेनार वाले घर में बात तय नहीं हुई थी कि एक जाहिरी शादी होगी और सब खत्म? हमारे बीच यही तय हुआ था ना। किसने धोखा दिया? किसने मेरी बीवी का दिल जलाया? किसने वादा खिलाफी की? बड़े हैं ठीक है, भाई हैं ठीक है, लेकिन वादा निभाना भी तो मर्द की शान है। कुरान की कसम मैं इंसी को संभाल नहीं सकता, उसके सामने ही कह रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि इंसी की हालत ठीक है? दो जुमले बोलती है कि सांस अटकने लगती है, लुकनत हो जाती है, बेहोश हो जाती है। खुदा की कसम से कुछ हो जाएगा। ये सब भाई साहब को नहीं मालूम है, अकदर साहिबा को नहीं मालूम है जो ताने देती है। मेरी कोई हैसियत नहीं है, अमीर हाफिज मेरा बेटा नहीं है।
नहीं नहीं है।
ये लीजिए सुनिए क्या कह रही है।
अमीर हाफिज तुम्हारा बेटा नहीं है?
नहीं नहीं है।
और इस्माइल, इस्माइल तुम्हारा शौहर है कि नहीं, बोलो।
हाँ है।
तो ये तुम्हारा शौहर इस्माइल, उसका एक भाई भी है जिसका नाम बुजुर्ग है। खाई बना दी है दोनों के बीच तुमने, तुम्हें पता भी नहीं चला कि इस खाई में कब सांप बिच्छू भर गए हैं। जो कामयार को इतनी हिम्मत हो गई कि तुम्हारे बच्चों के लिए घर का इंतजाम करने लगा।
क्या?
अगर तुम्हारी और कामयार के बीच दुश्मनी खत्म हो गई होती तो ये घर देना एहसान कहलाता, लेकिन इस मौके पर इसका नाम है मक्कारी, इसका नाम है धोखा देना, इसका नाम है फूट डालना। जरा इधर उधर भी नजर दौड़ाओ, देखो क्या हो रहा है।
क्या वो लोग कामयार के घर गए?
ये सब यूं ही तो नहीं हो गया है ना? जब इंसी पामिनार के घर की चौखट उखाड़ने लगेगी तो कामयार भी वनक में नई चौखट का इंतजाम करेगा। कहां गई है तुम्हारी अकलें? कहां गया वो दौर जब सब एक थे, भाई भाई थे?
हाँ, तो अंधों के शहर में कामयार को आंखें मिल गई हैं, आंखें मिल गई हैं।
अम्मी जान।
जाओ, रुक जाओ, जल्दी आओ, गाड़ियां रुक जाएं, रुक जाओ।
ये सईद ने तुम्हारे लिए भेजा है। मामू उसका केस संभाल रहे हैं। रजामंदी ले ली है, अब उसे फांसी नहीं होगी। कामयार मामू उसकी शादी कर रहे हैं। वालेकुम सलाम।
अब्बा इस्माइल दुकान आए हैं, हंगामा कर रहे हैं। सोचा अगर मैं रुका तो कुछ मुंह से निकल जाएगा।
तुमने अच्छा किया, उसे मैं संभालता हूं। जाओ फूफी से मिल लो, एक पैकेट चॉकलेट ले जाना, कहना सईद ने भेजा है। कहना कि जिन लोगों ने तुम्हारा घर बर्बाद किया, बेटे की जान ली और अब तक जिंदगी के मजे लूट रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि किसी का कत्ल हुआ, कातिल को फांसी हुई हमारी बला से, धीरे धीरे उनके मजे लूटने के दिन खत्म हो रहे हैं। ये जो तुमने कहा कि इस्माइल दुकान में आकर हंगामा कर रहा था, तो उनकी खामोशी का वक्त गुजर गया है और वो हंगामा करके अपना आप दिखा रहे हैं। मैं उनकी चीखें निकाल रहा हूं। तुम्हारे ससुराल वालों से हिसाब चुकाना है मुझे। तुम अपने बीवी बच्चों के साथ इस मामले से दूर रहो, तुम अपने बाल बच्चों को संभालो और बस तमाशा देखो। वो लोग मुझे जो भी कहें तुम कुछ ना बोलो, मैं जो कहूंगा उसका मजा लो। जाओ फूफी के पास। कब से उनसे नहीं मिले? बहुत दिनों से। गौर से देखना होगा तब पहचानोगे। बेटे का गम उसके चेहरे पर नजर आता है। जहां सबसे ज्यादा उदासी छाई होगी समझ जाना, वहीं तुम्हारी फूफी बैठी हुई है। उसके बाद घर जाकर मेहमानों का ख्याल रखना। अमीर और अकरम को वहीं भेजा है मैंने। उनके साथ ऐसा सलूक करना कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो, मेहमान नवाजी में कमी ना रहे।
अगर यतीम खाना खोलना है तो किसी यतीम को तलाश करो। मेरे बेटे का बाप नोट छापता है, उसे हमदर्द नहीं चाहिए।
तुम्हें हमेशा नोट छापने का शौक रहा है लेकिन छाप नहीं पाए। नोट हैं तो तुम्हारे पास लेकिन इतने नहीं जितना कह रहे हो।
क्या यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तन्हाई में दो बातें की जा सकें?
तुम्हें अगर तन्हाई चाहिए होती तो यहाँ सबके बीच में खड़े होकर ऐसे हंगामा ना मचाते कि होशी मेरे पास दौड़ा चलाए कि गजब हो गया।
हंगामा कर रहा हूँ ताकि पता मिल सके, उस घर का पता जिसे मैं तबाह करने वाला हूँ।
इसके लिए हंगामे की क्या जरूरत है? ये लो, कुछ और?
देखो, तुम जो ख्वाब देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा, हरगिज पूरा नहीं होगा।
तुम क्यों बीच में दखल दे रहे हो?
जानते हो होशी जब आया तो मैं कहाँ था?
तुमने मेरी बात का जवाब दिया कि मैं तुम्हारा जवाब दूं?
देखो, अपना बुरा ना चाहो काम यार, सीधे से जाकर अमीर हाफिज से अपने घर की चाबी वापस लोगे और उन्हें वहां से निकाल दोगे, बस। और कुछ नहीं कहना है मुझे, खत्म।
पता तो दे दिया, खुद ही क्यों नहीं चले जाते? मेरे दिल में तो सईद के खोने का गम है जिसे तुमने पांजी पर चढ़वा दिया। तुम्हारे दिल में क्या गम है सिवाय मलिहा सोहराबी के इनकार के?
जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तुम्हें चोट कहीं और से लगी है, मरहम कहीं और लगा रहे हो। तुम मक्कार आदमी अपने भांजे की फांसी के बाद मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मुझे पता है, मलिहा का इनकार तो सिर्फ एक बहाना है, और अगर ये ना होता और अगर तुम्हें मुझ में थोड़ा सा भी टेढ़ापन मिल जाता तो पूरे शहर में तुम ढिंडोरा पीट चुके होते मुझे बेइज्जत करने के लिए। किसी लड़की के किरदार पर कीचड़ ना उछालो, किसी शादीशुदा मर्द पर कीचड़ ना उछालो।
तुम उन लोगों में से हो जिनके जख्म बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था, बड़ी जल्दी ठीक हो गए। बुजुर्ग भी नहीं समझ पाए ये तुम्हारी पिटाई क्यों और कैसे हुई थी। जानते हो मैं तुम्हें जलील और रुस्वा कर सकता हूं, लेकिन रुस्वा करना मेरा काम नहीं है। बुजली की जंग नहीं करता मैं बैठकर सुनता रहता हूं। बहुत सब्र है मुझ में, मुनासिब मौके का इंतजार करता हूं। फांसी के तख्ते पर सईद की आंखें देखी थी, उसका गिड़गिड़ाना देखा, उसे क्यों वहां भेजा तुमने? सिर्फ इसलिए कि उसने नादानी में मोहसिन से यह कह दिया था कि इस्माइल तुम्हारी बहन के चक्कर में है, उसे शादी करना चाहता है। पूछा नहीं हुशी कहां मेरे पास आया था? पूछा नहीं हुशी कहां आया था मेरे पास? शमसी हर एक में मुझे देखती है, सब में तुम्हें देखती है। अब तक उसे कत्ल की मुआफी का इंतजार है। हाँ, तुम्हारे बेटे को अपने घर में रखा है, बहुत अच्छे इलाके में फर्निश्ड घर है उसका। उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, बाप की तरह शफकत करूंगा, यहां तक कि तुम्हारे मुंह पर थूकेगा एक दिन।
आज आग लगाने का दिन है ना? ठीक है, आग लगे तुम्हें। जवाब वाजे है, सईद ने कत्ल किया। मैंने उनसे कहा अपने नौजवान का खून जाया ना होने देना, वो तो माफ करने वाले थे। मैंने कहा फंदा सईद के गले में डलवा दो क्योंकि वो कत्ल करके भाग गया, उन्होंने यही किया। मैंने कहा नीचे से कुर्सी को ठोकर मार के गिरा, उन्होंने ऐसा ही किया। खुश हुए ना? कलेजे में ठंडक पड़ गई? जो कुछ तुम्हारे पास है, अपना सब कुछ, इज्जत आबरू अगर कुत्ते के सामने डाल दो तो भी वो नहीं मारेगा। तो फिर पस्त फितरत आदमी, मेरे मामले में टांग ना अड़ाओ। जानवरों की तरह से अपनी नाक जमीन पर मत रगड़ो। अगर तुम्हें नाक रगड़नी है तो जाओ अपने भांजे की कब्र पर और वहां पर नाक रगड़ो। तुम्हारे बेटे के सामने कह रहा हूं, तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वालों के सामने कह रहा हूं, अगर रात तक अमीर हाफिज उस घर से नहीं निकला या तुमने उसे नहीं निकाला तो मैं उस घर को तुम्हारे दिए सारे सामान के साथ आग लगा दूंगा। अब्बा की रूह की कसम आग लगा दूंगा, उसमें रहने वाले तमाम लोगों के साथ आग लगा दूंगा। हेलो,
कहाँ हो? तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, शरबत और पंखा झलने से कुछ नहीं होने वाला, मैं क्या करूं?
सब लोग खुदाफिज।
अच्छा ये बताओ मलिहा, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट पीट कर मुझे बेइज्जत कर रही हो? ठहरो, तुमसे काम है। मैंने कहा ना एक मिनट रुको, बात करनी है। जब तक वो तुम्हारा मरहूम भाई जिंदा था मेरे बच्चे जैसा था, उसके मरने के बाद तुम्हारी माँ को मैंने अपनी माँ की तरह समझा, तुम्हारे दुखों को अपना लिया, तो क्या हुआ? मेरा गुनाह ये था कि जायज ख्वाहिश को जबान पर ले आया, ये कह दिया कि मुझसे शादी कर लो, इसके अलावा कोई और बात थी क्या?
आप साफ साफ क्यों नहीं बात करते?
बात को टालो मत, जवाब दो।
हाँ, मैंने इनकार किया, शादीशुदा मर्द से इनकार किया।
मेरी बला से जो इनकार किया,
तो फिर आपको गुस्सा किस बात का है?
तुम्हारी चुप न रहने वाली जबान पर गुस्सा है।
कामयार को कैसे इस शादी की पेशकश के बारे में पता चला जो अब सबसे कहता फिर रहा है? कहाँ जा रही है? जबान क्यों बंद हो गई?
ऐसे लहजे में बात ना करें इस्माइल साहब, ये दूसरी बार है।
मुझे जवाब चाहिए।
मैंने कहा था कि तुम्हें चाहता हूं लेकिन इंसी को नहीं छोड़ सकता।
कहा शादी कर लो, तुम्हारे लिए घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, तुम्हारा तुम्हारे घर वालों का खर्च उठाऊंगा। अगर मंजूर है तो भी किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, और अगर नामंजूर है तब भी किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। यही थी तुम्हारी राजदारी? किसी को भी ना बताने का मतलब यही था?
मुझे नहीं पता, नहीं पता, अपने भाई की कसम मुझे नहीं पता।
अरे तो फिर किसको मालूम है? कामयार को मेरे मार खाने तक के बारे में मालूम है, तुम्हारे भाई और उसके गुंडे मौली दोस्तों के हाथों से। اسی اذان کی قسم میں حقیقت جان کر رہوں گا، یہ جان کر رہوں گا کہ یہ بات کہاں سے پھیلی ہے، اور پھر بات پھیلانے والے کے دل میں میں سوراخ کر دوں گا، اتنا بڑا سوراخ۔ میں اگر اب تک تمہارے بھائی کی غنڈہ گردیوں پر خاموش رہا تو اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں بھی چاہتا ہوں، لیکن اگر کوئی میرے گھریلو معاملات میں پڑے گا یا میری عزت سے کھیلنا چاہے گا تو پھر میں کچھ نہیں سوچوں گا، میں یزید بن جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟
سمجھ رہی ہو کیا کہہ رہا ہوں؟
آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا، ایک مسئلہ ہے۔
اکرم بھی گھر میں ہی تھی، میں ورنگ والے گھر جا رہا ہوں۔
کہہ رہے تھے کہ رات ہونے سے پہلے گھر جائیں گے اور جو بھی اس گھر میں ہوگا اس میں آگ لگا دیں گے۔
میری زندگی بھر کی قربانیوں کا سلا یہ ہے،
جگر دارند و افسوس کجا یا